परम पिता जाती है। माया से उनका कोई भी संपर्क नहीं है। ऐसे महावितरागी सुखदेव गोस्वामी जी का पास सुनाया गया। आप लोग सब बैठ जाइए, अब उधर पूछिए ना, चुपचाप बैठ करके सुनिए। नौ स्कंद की कथा उन्होंने बताया। उस समय में परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं। मैं जिस काम के लिए प्रश्न किया था, खाना पीना छोड़कर मैं यहां राज्य छोड़कर के आया था, आपने पूरा कर दिया। आज हमारा जीवन कृतार्थ हो, सफल हो। निवृत्तता से ही उपज्ञान, ये भागवत की कथा है। अर्थ धर्म काम तो देने वाली ही थी है, साथ साथ में ये तो बिना परिश्रम के कोई सुन ले, अन्य मनस्क होकर के भी सुन ले तो उनको अर्थ धर्म काम ये हो गया। इसमें कोई सावधानी से सुनने चाहे ना सुन मिल जाए, किंतु मुक्ति में ये संसारिक कष्टों से जो वृत्ति है मुक्ति, इसके लिए थोड़ी सी सावधानी दे। सावधान नहीं होने से समझ नहीं है। और कृष्ण प्रेम ब्रज प्रेम के लिए तो इससे भी बहुत ऊपर चल रहा है। धर्म अर्थ काम ये तो बंधन है, मुक्ति बंधनों से ऊपर उठ जाए, ज्ञान द्वारा से ऊपर उठ जाए। और प्रेमा भक्ति सुखदेव गोस्वामी जैसे गुरु नारद जैसे गोस्वामी लोगों के लिए ही बस पूर्ण है, बहुत ही जरूरी है, किंतु श्रीमद भागवत से सभी कुछ मिल सके। इसीलिए यहां पर श्रोता और वक्ता का विचार पूछे गए। हम लोगों को भागवत सुनने में ये इसी चीज को विचार करना, कैसा श्रोता होना चाहिए, कैसा वक्ता होना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए। कहीं अनजाने में और तब धर्म और कर्म मिल गया तो संसार चक्र में घूमते रह जाना पड़ता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रचित महाराज जी कह रहे हैं कि आज मेरा जन्म सफल हो। उन्होंने कहा कि आज तो पांच छह दिन हो गए, कथा सुनते सुनते जरा पानी पी लो, थोड़ा सा आराम कर लो, तब कथा सुनो, थोड़ा सा ना तो कुछ हल्का सा भोजन कर लो, नहीं तो जूस कुछ रस ले लो। नहीं, हमें कुछ की जरूरत नहीं, हम जो भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि एक सेकंड भी इस कथा से मैं बच जाऊं। निवृत्त कर सही उपगीयमान, कथा पाने वाले तो बहुत हैं, बहुत लोग, किंतु उनकी दृष्टि रहेगी आपकी के समय में कैसे उनके ऊपर। भागवत कथा समाप्त होगी, इतना प्रणामी पड़ा, इस पर कथा की सफलता है, कितना पैसा कपड़ा मत्था इत्यादि लेकर के हम लौटे, जो अच्छा तरह से मिल गया तो बहुत सफल। भागवत कथा का ये तात्पर्य निवृत्त से सुखदेव गोस्वामी को यह कहा कि आप जैसे विकराग पुरुष, अनासक्त पुरुष, वैराग्यवान पुरुष जो संसार से कुछ लेना देना नहीं, जो कि जब घर से निकले सुखदेव गोस्वामी बनने जा रहे थे जिस दिन गर्भ से निकल, उसी दिन आगे आगे चले जा रहे थे बन की तरफ और पिताजी करें आप उत्तर आप जंगल से प्रतिध्वनि हुई हा पुत्र, अरे कौन किसका पुत्र कौन किसका बेटा, कौन किस स्त्री कौन किसका पति कौन किसका क्या करता लगता है। सीधे चले गए, ऐसे की तरह की कोई घर बार छोड़ दे अपनी स्त्री को भी छोड़ दे, किंतु परम सुंदरी किशोरी को ये लड़की मिल जाए तो फिर उसमें उनका चित्र हो सकता। बिंदु मंगल जी घर से चले, वेश्या जी वेश्या ने चिंतामणि वेश्या ने उनको शरीर में अपमान रूपी बाण से उनका छेद कर दिया। उनको कुछ ज्ञान हुआ, उस स्त्री को छोड़ करके चल पड़े। एक तो पहले अपने स्त्री को छोड़ा था, दूसरी बार ये चिंता मनी वेश्या को जब आगे चले, अब तो मुझे कृष्ण का भजन करना है और आगे चले तो कुएं में पानी भरती हुई कोई रमणी मिली और उसे देख करके मन ललच गया और बोले मुझे प्यास लगी पानी पी। इसी बहाने में उससे कहा कि जरा पानी पिला दे। उसने उनके तरफ में देखा और पानी पिला दे, रूप की प्यास थी पानी की प्यास थी। उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब घर गए देखा कि हमारा जीवन एक बार अपनी स्त्री को छोड़ करके बस, दूसरी बार चिंता मनी वेश्या को मैं नहीं छोड़ा और फिर मेरी आंखें लग गई, बस उसी से उसके कांटे दोनों मांग कर सिर में लगाने लगे और अपनी आंखों को खो दिया। आंख पर विश्वास नहीं चाहे स्त्री हो जाए, भगवान की कथा पाने वाला कैसा रहेगा। निवृत्तर सही संसार का छोड़ कर सदा के लिए छोड़, कृष्ण के भक्ति में रम जाए, उसको याद ना करे। सब कुछ छोड़ना बड़ा भारी कठिन है, सहज है। स्त्रिया का मोह भी छोड़ देना कठिन नहीं सहज है, स्त्री पुत्र परिवार को राजभवन को छोड़ देना भी सहज है, किंतु प्रतिष्ठा को छोड़ना बड़ा भारी कठिन है। प्रतिष्ठा भी से सुखदेव गोस्वामी ने उस प्रतिष्ठा को भी राजा जनक के दरबार में गए थे, सात दिन तो उनको ड्योगी पर रोक दिया किंतु कोई भी बात नहीं। फिर भीतर में प्रवेश कर जाया, दूसरी डोरी पर भी रोक दी, तीसरी डोरी पर किशोरी स्त्रियां आकर के और उनको घुमा रही है, चित्त बना रही है, उनसे भी कोई नहीं। अंत में राजसभा में जब पहुंचे नारद जी बैठे थे, उन्हें एक तरफ में बैठा दिया अपनी स्त्री को सोलह श्रृंगार करके और दोनों के बीच में बैठा दिया। नारद जी मां से उठ करके प्रणाम करके चले आए, नीचे बैठ गए और उनको पता नहीं कि कौन बैठा है। ऐसे उत्तर आ गई भागवत की कथा कहने वाला कौन यहां पर बैठा है। ऐसे उत्तर आ गए, ऐसा कोई कहने वाला हो किंतु ये गौण लक्षण है, मुख्य लक्षण नहीं। हरि कथा में इतना तल में हो, कृष्ण प्रेम में इतना तल में हो गया है, उसको संसार की धरती बार की कुछ याद रखा है। उसी समय में कभी भी संसार की भौतिक कृष्णा, इसलिए कहते हैं आप जैसे महानुभाव भीतर आ गए, आज महापुरुष कृष्ण की कथा है। निवृत्तर से औषधा श्रोति मनोभिराम कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद विरक्ति बिना पशुना। निमित्त तरसे उपगीयमान उपगीय माना। आजकल करके जो पाठक होते हैं भागवत के, थोड़ा सा संस्कृत पढ़ लेते हैं या बिना पढ़े हुए जो भागवत बांचने वाले हैं उनके पास में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और गोरखपुति भागवत में वो सब लिखा है, आज ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, और उसमें कथाएं हिंदी में लिखी हुई है, उनको पढ़ करके कह दिया। किंतु सुखदेव गोस्वामी जैसा उपगीय माना, संसार से विरक्त होकर के चले गए। और फिर उनके पिताजी ने अफसोस किया, ऐसा जो कि व्यक्ति जिसको मैं भागवत पढ़ाना चाहता था ये हाथ से निकल गया, सोता इसको पढ़ाना चाहिए। इसलिए छल बल से उन्होंने कुछ बहनियों को भागवत के श्लोकों को याद करा दिया और कहा जाओ वन में, और उस वन में जाना यहां पर अच्छे सुख पक्षी तोते मैना इत्यादि मिलेंगे और तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे। और उन्होंने कहा कि वो जो वन है विशेष वन, वहां पर अच्छी तरह से तुमको शिकार मिल जाएगा, जिस वन में सुखदेव गोस्वामी जी खुशी हुई वो वहां पर जाकर के इतने सुंदर से सबसे पहले पक्षी जाल में आते, यही जाल में आ गए सुखदेव गोस्वामी, जो माता पिता संसार सबको भूल करके गए थे, आज भगवान के प्रेम में आकृष्ट हो गए। जैसे मछली वो क्या कांटा खा लेती है और फिर अपने जीवन को भी दे देती है, ऐसे उसमें बच गए। उसने कहा अरे इतना सुंदर जिसका रूप है उसके गुण क्या है, अपने गुरु से पूछ करके आना। दूसरे दिन उसने जाकर के कहे तो उनसे कहा, उन्होंने कहा पहले में कृष्ण का रूप कर्ण है, दूसरे में है उनका गुण क्या है। ओ बकीयम स्तन ऐसा कौन दयालु है जगत में, तो ऐसा दयालु नहीं देखता। राम जी बड़े दयालु हैं, नारायण बड़े दयालु हैं, किंतु कृष्ण के समान कोई दयालु नहीं है। उतना बाल रक्त को बच्चों को रक्त को एकदम पान कर छोटे छोटे शिशुओं के मांस को खा जाता है, ऐसी रुधिराक्षी रुधिर पान करने वाली और बच्चों को खाने वाली एकदम निष्ठुर निर्दय। और वो आई कृष्ण को अपने स्तन में दूध पिलाने के लिए और उसने काल को बीस भर दिया। बीस तो खाने की इसको बच्चा नहीं होता, उसको दूध नहीं उतरता, स्तन तो उसका था किंतु बच्चा नहीं था, इसलिए दूध तो था नहीं, किसी कौशल से माया से उसमें काल को बीस भर दिया और कृष्ण के मुख में दिया। कृष्ण उस समय आंखें बंद कर रहे थे, इसको मारना नहीं है, देख करके कैसे माता को मारना, आंख बंद कर दिया। किंतु सोचा किसका कल्याण करना है, ऐसा को खींचा उन्होंने बीस को, जो बीस को आया ही साथ तो उसका प्राण भी निकल कर छोड़ो छोड़ो किंतु आप नहीं छोड़े, हमारे पास वाटा समय छोड़ता नहीं, इसे उसको गर्म कर दिया। और कैसी गति थी, हाथ उचित माता जैसी गति उसको, जो दूध पिलाने वाली धात्री होती है वो भी सेकेंड भैया है, ऐसी गति उसको यदि कहा गुरु वैकुंठ में सदा के लिए उसको दे, ऐसा कौन दयालु है। इसलिए ऐसे कृष्ण को छोड़कर के दूसरा किसका भजन किया जाए। ये तो हमारे लिए ये श्लोक है, को निराकार व्यस्त था, भगवान को निराकार मानता था, भगवान को निर्गुण मानता था, निराकार अव्यक्त अनादि मानता था, उनको कोई देखा नहीं जा सकता ऐसा मानता था। ये तो मेरे लिए कहेंगे निर्गुण निराकार का क्या ध्यान कर रहा, सो मत कोई सोएगा सो कोई निर्गुण निराकार का भजन करके क्या होगा। निर्गुण निराकार जो है ब्रह्म को तो दयालु है नहीं, इसका क्या भजन करो, इसलिए हमको किसका भजन करना चाहिए। ये जितना सुंदर है उसी में जो ये गुण है उसका नाम करने मात्र से, उसकी लीला का स्मरण करने मात्र से, उसका कीर्तन करने से अनायास ही उस चीज को ला दिया जा सकता है। तो क्यों मैं निराकार का भजन करूं, बस मेरे गुरु निराकार का भजन करना छोड़ दिया और व्यास जी के चरणों में आकर के नतमस्तक हो गए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत तुमको सिखलाया, कैसे सिखलाया, स्कूल में जैसे पढ़ते हैं ऐसा नहीं, अनुभूति के साथ में सिखलाया। जैसे नारद जी ने व्यास जी को सिखलाया, कैसे, भक्ति के द्वारा कृष्ण की समस्त लीलाओं का उन्होंने एकदम दर्शन कराया। और तुमको प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, हमको किस लिए भगवान का भजन करना चाहिए, इत्यादि विषयों की अनुभूति पूर्ण रूप से उनमें दे दी। और इसी तरह से व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को अपने गुरु जी से जैसे उपगीया माना, उपमाने अपने गुरु जी से सुना, ठीक उसी के रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुना। वही सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं, जिसने अपने गुरु जी से शुद्ध रूप में प्रेममय रसमय श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया। निगम कल्पतरु गलितं फलम्, ये निगम कल्पतरु का गलित फल है। निगम क्या है, वेद उपनिषद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत रामायण पुराण जितने हैं इसको बदलाया गया नहीं। कल्पतरु कल्प का पेड़, जो कुछ कल्पना करेंगे वो दे देगा। आम आम का एक पेड़ है, तो आम का पेड़ में उसकी जड़ में मुख लगा करके उसका रस चूसो कैसा लगेगा। आम का पेड़ है ना, उसमें जो छाल है उसमें मुख लगा दो और चूसो, तो उसकी डाली को चूसो नहीं। वही पेड़, पेड़ में लगा फूल, फूल से लगा फल, फल जब पक गया सूरज की किरणों से अत्यंत लाल हो गया, रसाल हो गया, क्वेल आकर के बैठी या सुख पक्षी बैठा और देखा कि बहुत मधुर है, उसे आकृष्ट होकर गया, यू ही चोंच मारते हुए नीचे गिर गया। उस फल को खाने में जो रस है, पेट भी वही चीज है, दाल भी वही चीज है, किंतु उसमें वह रस नहीं जो फल में है। इसलिए वेद उपनिषद गीता भागवत पुराण रामायण जो कुछ है सबका ये फल है। कौन, यीशु। वो फल जो है जिसको सुना रहे हैं, कौन सुना रहा है, यहाँ परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि आप जैसे संसार में कोई भी स्पृहा नहीं रखने वाला व्यक्ति, संसार से उपराग वितराग, यहां तक कि ब्रह्म ज्ञान से भी उपरत हो गया, यहां तक कि बैकुंठ में भी उनको रस नहीं आ रहा, यहां तक कि उनको मथुरा द्वारका में भी रस नहीं आ रहा, जो गोपियों की लीला चित्र इत्यादि सुना। इसलिए ऐसी जो कथा है जिसमें सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता हो और छोटा कैसा हो, परीक्षित महाराज कैसा, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, मुकुट उठा करके रख दिया। परीक्षित महाराज को कहा जैसे आप यज्ञ कराएं, कर्म का फल आपको मिलेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे, कहा जो उधर ही बात रखो हमारे कान में नहीं आने। किसी ने कहा कि यज्ञ करने के बाद मुक्ति के लिए उपनिषद सुनो, मैंने जो उधर ही रखो, हमको समय नहीं, फुर्सत नहीं है,
किसी चीज का श्रवण उन्होंने नहीं किया। भागवत का कौन सा भागवत? जिसमें रस ही रस। क्या रस है? शुभानंद जी ने परिचय थोड़ा सा दिया होगा दशम स्कंध के चरित्र में, विशेष करके गोपियों के और कृष्ण के चरित्र में दिया होगा, जहां पर कि कृष्ण गोपियों के पैर को लौटते हैं, जहां पर कि सब भक्त लोग कृष्ण के लिए तड़पते हैं, और कृष्ण किसके लिए तड़पते हैं? गोपियों के लिए तड़पते हैं। लोग जैसे कि कृष्ण को गरज होती है तो किसी को बुलाते हैं, कृष्ण ने बंसी से किसको बजाया बुलाया? बंसी बजाने का तात्पर्य क्या था? गोपियों ने तो नहीं बुलाया, किसने बुलाया? कृष्ण को हजार बार। इसलिए भागवत कहते हैं और शास्त्र कहते हैं कि भगवान की आराधना करो, और भक्त क्या कहता है? जो भगवान भी भक्त की आराधना करो। ये भागवत का संदेश है, ये प्रेम है, ये रस पूरे के श्रीमद भागवत है। इसको परीक्षित महाराज जी को सुना रहे, परीक्षित महाराज जी को और किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। ऐसा नहीं यहां पर कोई सुनता हो जो कि धन की तमन्ना नहीं, प्रशंसा की तमन्ना नहीं, स्वर्ग की इच्छा नहीं, वैकुंठ मुक्ति की अभिलाषा नहीं, और वैकुंठ प्रेम की भी जिसको आवश्यकता नहीं। यह तभी जिन लोगों को मथुरा और द्वारका के सप्तभामा रुक्मी जैसे प्रेम की भी आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि और भी आगे बढ़ जाओ, प्रति में भी सखाओं को प्रणाम है, यशोदा मैया और नंद बाबा को विशेष प्रणाम है। ये सभी लोग कृपा करेंगे हम लोगों को कृष्ण की को वशीभूत करने वाली जो गोपियां हैं उन गोपियों की हम लोग का स्मरण करके हम लोग जीवन के से ऐसा व्यक्ति भागवत सुन, तब तक उसको प्रेम ऐसा मिलेगा। और नहीं तो कथा में आते हैं हमको एक लंगड़ा मिल जाए, हमको धन मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, हमारा चित्त आसान बनाता है, वो कुछ हो जाए तो ये भागवत के फल से वंचित हो जाए, नित्य हो जाएगा उसको वंशा का उपकरण तो दे देंगे उसे अपना। और सुखदेव गोस्वामी भी कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने उद्धव के माध्यम से ऐसे सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। क्या क्या स्थिति है? बंदे नंद बंदे कृष्ण सर जासम हरि कथो गीत नाद भुवन त्रयम। क्या कहते हैं? हम वृंदावन की कहीं झाड़ियों में आसाम हो चल रहे हो, ये किसकी अभिव्यक्ति है? ये सुखदेव गोस्वामी जी की अभिव्यक्ति। उन्होंने तीनों के माध्यम से कहा था, उद्धव जी के माध्यम से, किंतु अभिव्यक्ति किसकी है? ये सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ते पढ़ते आप बोलते बोलते ये लोग हो गए वृंदावन के कहीं कुंजों में, कहीं कहीं वृंदावन में जहां पर गोपियों के साथ में कृष्ण की विदाई हुई थी, वहां पर एक गुलमन एक घास दुख की घास कोई भी घास। इसलिए जब गोपियां कृष्ण के प्रेम में मतवाली होकर के कृष्ण की तरफ में जाती हैं मिलने के लिए, उस समय उनकी चरित्र की भूमि हमारे ऊपर न पड़ जाए तो हमारे जीवन जिसको वेद श्रुतियों ने आज तक नहीं पाया, नारद इत्यादि इसके लिए लोग ललचते हैं, इसलिए हमारी आकांक्षा है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी जैसा वक्ता हो और श्रोता हो इतना हम नहीं हो सकते हैं हम जान, न तो वक्ता सुखदेव गोस्वामी के समान भूत हो न भविष्य के साथ हो न हो, किंतु उनका ग्रहण करने वाला ऐसी इच्छा तो रख सकता है कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, हमको दुख की दूर करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो रसिक शिरोमणि परम रसराज अमृत स्वरूप जो कृष्ण है और राधिका जी महाभाव स्वरूप है उनकी कुछ सेवा इतना तो रहना चाहिए। बस यही याद आगे करके जो कोई भाग बैठेगा तो क्या होगा? गुरु और शिष्य के संभाग में ऐसी सुंदर प्रथाएं निकलेंगी
जैसे कि किसी जल प्रपात में अपने आप पानी बन जाता है,
जैसे कि काप कैलाश
कैलाशी के पास मान
उसमें गंगा गंगा गोदावरी
और पंजाब की पांचों नदियां
और यहां पर ब्रह्मपुत्र इत्यादि कैसी नदियां निरंतर बहती रहती थी, उसका पानी पुराना कम नहीं होता, ऐसा वो कथावा शुरू होना चाहिए। कृष्ण के रस में पका हुआ हो, श्रोता भी वैसे पका हुआ हो और उनके माध्यम से जो कथाएं निकलेगी उसका यदि कोई स्तंभ करे तो क्या होगा,
स्वर्णिम ज्ञानी तपस्वी योगी भी होगा,
उनका होगा। सुखदेव की सभा में पश्चिम महाराज की सभा में जितने भी श्रोता बैठे थे 80,000 को इसी को और दूसरे कम उनके गृहस्थलोक थे, ऋषि मुनि में भी बहुत से लोग गृहस्थ भी थे, कोई कोई ब्रह्मवासी, कोई कोई व्यवासी, कोई कोई राजवासी, कोई कुछ थे, बड़ी बड़ी सभा पूर्ण सभा। और इसके अतिरिक्त और भी न जाने कितने लोग थे गृहस्थ और सुनने वाले। जब कथा समाप्त हो गई तो उसमें ऐसा कोई नहीं बचा जो सभी रसिक भक्त नहीं हो गए,
सभी लोगों ने उनका कर्म छूट गया, ज्ञान छूट गया, योग छूट गया और ज्ञान का राधा कृष्ण के एकांत
ऐसे ही होने चाहिए।
आप लोगों से भी मिले नहीं कथा अपने सुन
सुन करके ऐसे ही करें, ये धन धन पुत्र परिवार
और बैठक ये स्वर्ग से पीछे नहीं मिलेगा,
ये तो एक प्रसाद का ज्ञान है, इसलिए ऐसी इच्छाएं आप लोग मत करेंगे न करेंगे।
बस राधा जी की दासी हो सबके प्रयत्न है तो कृष्ण की सेवा करेंगे, भागवत सुनने का यही परिपक्व और सबसे बड़ी था, इसे नीचे का कोई वैष्णव संत लोग है वो कौन जितने कर्म ज्ञानी थे उनको परीक्षित महाराज के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी ने जब हरी कथा सुनाई, दसम स्कंद की कथा जब पूरी हुई सब उनकी रुचि धर्म हो गई, सबको छोड़ करके एकांत की रूप राधा कृष्ण।
ऐसी जो कथाएं होती है ये कैसी होती है,
भव सभा भव की रूप का ये भव रूपये क्या
इस प्रसंग है,
पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी यथादेवी भवन
आया समझ में,
पुनरपि माता के गर्भ से जन्म हुआ, कौन सी मैया सुकरी कुत्ते कुटिया पुरुष देवता उत्तम गर्व सर भिक्षु सर जन्मने में कोई अंतर नहीं है, मरने में भी कोई अंतर, माता के गर्भ जाने में भी कोई अंतर नहीं, यदि हरिभजन नहीं किया तो किसी भी जोड़ी में जाना सभी बराबर है, यदि हरिभजन हुआ तब तो ठीक है और नहीं सुख और दुख जैसे पेट में रहते हैं फिर निकल जाते हैं फिर खाते हैं फिर मर जाते हैं, ऐसे ही इसी का नाम है माया अथवा भवरोग। भवरोग की परम औषधि है क्या, स्वतः रूप में भक्तों के हृदय में जो हरि कथाएं आती है अपने शिष्यों को या हरि कथा के माध्यम से जो बोलते हैं उसका यदि किसी प्रकार से श्रवण कर लिया जाए भवरोग को अपने आप शुभ मन कर हो जाए, उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होगी, मुक्ति की इच्छा कैसी हो जाएगी वो भी अब तक तुच्छ होगी, मुक्ति बेकार लोग चाहते हैं मुक्ति, मुक्ति बहुत कम की चीज है, मुक्ति में फंस कर जाने से फिर उसे बल्कि विषय ही अच्छा है एक तरह से, फिर तो साधु समूह होगा कि तो मुक्ति वालों को विकासन नहीं हरी कथा नहीं मिलेगी, इसलिए बल्कि मुक्ति की अपेक्षा विषय कभी हो जाए तो ये तरह से अच्छा है, मुक्ति नहीं है, एक बार मुक्ति होने से फिर जगत में न तो आएगा न वैकुंठ में जाएगा न किसी तरह से भगवान की सेवा हो पाएगा, उसकी गति ऐसी होगी जैसे पत्थर बन जाता है, पत्थर में जैसे सेंस नहीं होता इच्छा शक्ति नहीं होती है जिसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, पत्थर बनना और मुक्ति होना दोनों के पत्थर बनना बहुत ज्यादा है, लोग नहीं समझते हैं इसलिए मुक्ति 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 करते हैं
और कुछ ऐसे संप्रदाय के रूप है जो मुक्ति को भी उन्होंने सर्वस्व मान रखा है, किंतु मुक्ति को अब शास्त्रों में व्याग भी करा
गया,
व्याग बाघिनी,
जैसे बाघिनी खा जाती है ना
उसकी सत्ता को लोप कर देती है, उसी प्रकार से मुक्ति को बाघिनी कहा गया। इसलिए मुक्ति की कोई भी इच्छा नहीं करना चाहिए भागवत को सुन करके, ये भी एक बहुत सा बड़ा भारी रोग है। इसलिए सबसे पहले जब कोई अपनी इच्छाओं को संसारिक और निकाय छोड़ करके सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभारत से हरि को शासन करा,
जिन्होंने अपने गुरु की विधिवत सेवा की है और उसी भावना से उनका भागवत को पढ़ा, प्रेम ही को एकमात्र भागवत का प्रमाण है।
राधा कृष्ण अनंत है, गोपियों की आराधना ही कृष्ण के प्रति यही सबसे श्रेष्ठ आराधना है और भागवत की एकमात्र प्रमाण। तो ऐसा जो गुरु और शिष्य पाठक और श्रोता तथा वाचक और श्रोता, तो यदि ऐसे पंक्तियों के रूप से यदि हरि कथा नहीं सुनते हैं अवज्ञा करते हैं तो क्या होता है, केवल मात्र यही एक व्यक्ति है जो नहीं सुनता, बाकी सभी सुनते हैं, कर्म ज्ञानी तो सुन लेंगे किंतु जो नहीं सुनता है वो पशु खा जाता है, पशु क्यों पशु न माने क्या, दो प्रकार के पशु न, पशु की हत्या करने वाले जैसे गाय की हत्या करते, गाय की हत्या करने वाला सबसे महाभारतकारी भारतीय संस्कृति में सबसे जघन्य गाय है, उसका छूना उसका छुआ हुआ पानी उसको देखना भी पाप है, आजकल हमारे राष्ट्र में भी यही हुआ, इसलिए इनका ये महादुर्भाग्य और पतन हो रहा है राष्ट्र का, जो किसी विषय में भी उन्नति नहीं हुई, सुख शांति जब उन्हीं लोगों में नहीं है अपने आप बढ़ते हैं इस संसद में तो फिर हम लोगों को क्या होगा। आजकल तो देखे हम जो पेपर पढ़ते हैं वो सब अच्छी तरह से जाते हैं, उसमें हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, जिस राजनीति में कुछ धार्मिक गुण हो वो तो कुछ हो सकता है, तो जहां पर कि गो हत्याएं सब तरह जाना चलती है, यह है पशु भागी, जो भगवान की कथा नहीं सुनता वो पशु भागी कसाई के समान है, गो भाग, इसलिए गो खाती लोग जो वो हत्या करने वाले इस कथा को नहीं सुनते। और दूसरा पशु ज्ञात, आत्मा ही पशु है, उस आत्मा का भाग करने वाले अर्थात जन्म जन्मांतर माया में गिरा देने वाले लोग हैं जो भागवत को नहीं सुनते, बाकी सब लोगों को प्रेम के साथ जो कर्मी है ज्ञानी है व्यक्ति है वो धीरे धीरे सीधे शुद्ध भक्त होंगे, अशुद्ध होने के बाद में तब प्रेमी भक्त बनेंगे, फिर व्रज के भक्त बन सकते, फिर वो जो मैंने कहा उसी का। इसलिए हरि कथा सुनना हो तो ऐसे सुनना चाहिए जैसे परीक्षित महाराज जी सुन रहे हैं समस्त कामनाओं को छोड़कर, इसके बराबर चीज होगा तो आप लोग लाख जन्मों में प्रयत्न से कर्म से ज्ञान से कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी बता के आपको समय हो गया अब रहने दिया जाए बात
नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं,
हमारे बहुत समय नष्ट हो जाएगा, अभी हमको जाना है इतने रुपए का पीजियो समाज मात्रों से बातचीत करता होगा, ये इतने संसार में लगा देगा कोई जन्म बढ़ रोग में और इसकी कथा क्या करेगी, उसे उठा करके नित्य काल के लिए उसे प्रेममयी और बड़ी सुंदर उसका भविष्य करता है। इसलिए कहते हैं इन कथाओं का बड़े प्रेम के साथ में सेवन होना चाहिए। दूसरी बात ये बोला कथा सुनने लगा तब तो जो गुरु हृदय से होगा और नहीं तो प्रणामी में ही नजर करेगी, और ये धनमानी श्रोता लोग आ रहे हैं उनको किसी प्रकार से चिड़िया को यदि चंगुल में फंसा लिया जाए, बहुत से शिष्य हमारे हो गए और पैसा पीछे मिल जाएगा, ये सब चीजें इसके लिए बात है। कोई भी आर्थिक अभिलाषा इसमें नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करेंगे इस सुनने में किसी प्रकार की आर्थिक और ये सब चीजें नहीं, सिर्फ आर्थिक काम कामनाओं से पूर्वक एकमात्र ये प्रेम की प्रेम भक्ति हमको राधा कृष्ण के चरणों में हमारा अनुराग हो, बस यही एक कामना लेकर के सुनेंगे। और जहां ऐसी कथाएं हो रही है संसार बालिका में कथा तुम्हारी एक ही समय, किंतु उद्देश्य में अंतर होने से सभी कुछ उद्देश्य में चला। एक आदमी किसी व्यक्ति को उद्देश्य करके गोली लगी, जिसको मारेगा, गोली नहीं लगी किंतु उसकी होगी फांसी, क्यों? उसका उद्देश्य था मारने का। और एक आदमी ने देखा कि चोर डकैत आए हुए हैं और ये लोगों का अपहरण कर रहे हैं, लोगों की हत्या, ये लोगों को हमारे सामने कर दिया और बंदूक से इनको मारना चाहिए, ये था गोली चलाई किंतु बाई चांस किसी एक दोस्त लड़के को लग गई और लड़का मर गया। अब उसकी क्या सजा होगी? फांसी होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों? उद्देश्य था उनका, क्या इसलिए उस पर विचार किया जाएगा, हो सकता है कि ठीक है। चोर डकैतों को मारना वो पुरस्कृत व्यक्ति होगा और अच्छे आदमी को मारने से उसको दंड मिलेगा, इसलिए उद्देश्य पर सब कुछ निर्भर करता है। कथाएं तो वो भी कहेंगे किंतु उद्देश्य उनका अलग, जिनों का उद्देश्य है कि हमको संसारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये सोता है इनके अंदर में कृष्ण भक्ति रस था, तब तो इसका उद्देश्य सब सोता भी लोग गई इस चीज को अच्छी तरह से निर्भर करते, अंत तक कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। और जब भक्ता का उद्देश्य ही दूसरा कुछ है तो श्रोता को क्या होगा? अब हम इस चीज को समाप्त करते दूसरे विषय का, भगवान की जो भक्ति होती है कैसी होनी चाहिए। जो श्रोता जी ने देखा हमारे घर में बड़े उत्साह में आ रहा, बड़े उत्साह में आ, ये तुम्हारा लड़का बड़ा आकर्षक है, घर में घुस जाता है, मक्खन खुदा लेता है, बच्चों को खिलाता है, बंदरों को खिलाता है, पकड़ने पर पूरा समझा लेता है और हम खुला करके खा लेता है। जिस घर में नहीं मिलता है मक्खन उनके बच्चे जो सो रहते हैं उनको चीटी काट लेता है। कभी कभी किसी ने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के साथ ही साथ में कहते क्यों पकड़ा हमको, अतः तुमने घर में चोरी की गुड़िया का युद्ध कर लिया। अरे मैंने क्या किया, मैंने तो चोरी नहीं किया, क्या किया? अरे हमारा बछड़ा कहीं गुम हो गया था, मैं चुप खोज रहा था, खोजते खोजते मैंने उसको पा लिया, ये खड़े के अंदर में घुस गया था, मैं इसको निकालने के लिए अपने हाथ दे रहा था। उसने कहा तुम्हारे हाथ में और मुख में कैसे लगती था मक्खन? अरे मैं बछड़े को कर कहा तुम्हारा बछड़ा है, उसको देखकर के मार रहा पत्थर था पिताजी ने एक छोटा सा खिलौना बछड़ा दे रखा था, भेजे देखो तो बस हम किया इतने में उनका ध्यान अलग गया और वो भाग करके चला। कभी कभी मैया ये बच्चों को लेकर के कहीं घुस गया, आग डोकरी या वो गोपी पकड़ने के लिए पूरी तरह से एकदम तैयार है, आग जरूर पकड़ू। आज यशोदा जी को देख रहा हूं ये तेरा लाला ऐसा गए, वो छिपी हुई थी, जब कृष्ण ने मक्खन उठाया तरुण को पकड़। अभी कुछ सवेरे का समय ऐसा जो भी अंधकार कुछ कुछ था, उसने उनको पकड़ लिया, पकड़ करके ले जा रही है यशोदा जी के पास। जब यशोदा जी के पास में गई यशोदा जी तन में होकर के तभी मंथन कर रहे और कृष्ण आवेश में उनकी लीलाओं का चिंतन करते हुए गोविंद दामोदर गोविंद